की रचयिता कौन है? पंडित दौलत राम जी। सोडरमल जी नहीं, दौलत राम जी। खैराला के रचयिता पंडित दौलत राम जी, जिन्होंने छह ढाल के अंदर हमें संसार अवस्था से लेकर मोक्ष अवस्था तक का पूरा वर्णन किया है। मतलब अगर गुणस्थान अपेक्षा भी देखा जाए तो जो पहला मिथ्यात्व का जो गुणस्थान है, आयो आयो, पहला जो मिथ्यात्व का गुणस्थान है, उस गुणस्थान से लेकर जो पूरा सिद्ध अवस्था तक की बात है, तो यहाँ तक ये पांचवी ढाल तक अपन देखेंगे, तो पांचवी ढाल तक की जो अवस्था है वो पांचवें गुणस्थान तक की अवस्था है, क्योंकि सम्यक दर्शन हुआ हमें कौन सी ढाल पे? तीसरी ढाल पे। पहली ढाल हमने देखी जिसमें चारों गतियों के दुख का वर्णन था, फिर दूसरी ढाल में उस दुख का रीजन बताया कि हम वो दुख में क्यों हैं, क्यों हमें वो दुख क्यों हमें मिला, तो वो रीजन दूसरी ढाल में बताया। तो फिर अब उस दुख से छूटने का उपाय क्या है, तो वो उपाय तीसरी ढाल में प्रारंभ हुआ, जहाँ पे सम्यक दर्शन प्रारंभ हुआ। तीसरी ढाल में सबसे पहले बताया सम्यक दर्शन, फिर चौथी ढाल में बताया सम्यक ज्ञान। वैसे तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होता है, जब भी जीव को सम्यक उत्पन्न होता है तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ उत्पन्न होता है। चारित्र बाद में आता है, सम्यक चारित्र जो है, जो तीन बोलते मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रारी मोक्ष मार्ग, जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है और सम्यक चारित्र है, उसमें जब उत्पन्न होता है सर्वप्रथम जीव को, तो सम्यक दर्शन और ज्ञान एक साथ उत्पन्न होता है। लेकिन दर्शन ज्ञान का पूरक होने की वजह से दर्शन को पहले कहा जाता है, कि दर्शन से ज्ञान होता है, इसलिए दर्शन को पहले कहते हैं। तो जब तीसरी ढाल में सम्यक की प्राप्ति हुई, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, उसके बाद में चौथी ढाल में उस सम्यक के बाद सम्यक ज्ञान का वर्णन किया। अब उस जीव को और वैराग्य की वृद्धि करने के लिए पांचवी ढाल में बारह भावनाओं का वर्णन किया है। ये जो जीव है वो जीव यहाँ तक तो आया है, अब इस जीव को धीरे धीरे उसमें और वैराग्य वृद्धि कैसे करे, ये पांचवी ढाल इसमें दो तरह से बताई है। एक तो इसमें नीचे सबसे अपने पूरी पांचवी ढाल हो गई है, लास्ट आई थिंक नेक्स्ट संडे आपका एग्जाम भी होगा, नेक्स्ट संडे अपन जो एग्जाम करेंगे तो उसके अंदर जो बेसिक अपने को सिर्फ पांचवी ढाल के बजे चार ढाल तो अपनी हो चुकी है पहले ही। पांचवी ढाल में अपने को ये मालूम होना चाहिए, ये जो बारह भावनाएं हैं वो बारह भावनाएं यहाँ पर मुनि अवस्था की मुख्यता से सही है, लेकिन सावक भी अपने वैराग्य की वृद्धि करने के लिए इन बारह भावनाओं का चिंतन करता है। बराबर है? कौन कौन सी है बारह भावना? पहली अनिश्चय, दूसरी अचरण, संसार एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, आश्रव, सवर, निद्रा, लोक, बोधि दुर्लभ, घर। बारह भावना, बारह भावना के नाम तो यार होने ही चाहिए, ठीक है? तो इसमें सबसे पहले हमने क्या देखा था, जो छह भावनाएं स्टार्टिंग की, वो छह भावनाएं इस जीव को संसार संयोगों से वैराग्य कराती हैं। क्योंकि छह भावनाओं में जो अनित्य, अचरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, ये जो छह भावनाएं हैं, ये छह भावनाओं के अंदर किसका वर्णन किया? हमारा, हमारे साथ में जितने भी संयोग है उनका वर्णन किया, उनसे हमको वैराग्य कराया। और अंत की जो छह भावनाएं हैं उसमें फिर तत्व की बात बताई कि वास्तव में जीव करके जो आजकल है फिर उसको कैसे संवर होगा, फिर उसकी निद्रा कैसे होगी, इस तीनों लोक के अंदर ये जीव कहाँ पर है, और ये जो वास्तव में अंत में जो धर्म है जो बोधि दुर्लभ बताया कि धर्म की प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, और सबसे अंत में जो संदर्भेशन ज्ञान चारित्र है कि उसकी प्राप्ति सबसे कठिन है, वो सबका वर्णन यहाँ पर किया। हमारा लास्ट एक छंद संज्ञा बचाया 15 नंबर का, उसको करते हैं, उसके बाद में इस ढाल का पूरा रिवीजन करेंगे क्योंकि नेक्स्ट संडे फिर एग्जाम के लिए तैयार रहेंगे। चलिए लास्ट है पेज नंबर 155 का, अपनी 15 नंबर का है, क्या लिखा है, तो धर्म मुनिन करी धरिए, तिनकी करतूति करिए, ताको सुनिए भवि प्राणी, अपनी अनुभूति सिखानी। सो धर्म मतलब कौन सा धर्म, यहाँ सौ धर्म इंद्र वाली बात नहीं है, और या फिर 100 धर्म ऐसी वाली बात भी नहीं है, सौ धर्म का मीनिंग क्या है, सौ मतलब वह, यहाँ पहले को कंबाइन किया है कि जो अभी तक हमने धर्म का वर्णन किया, जो धर्म की बात मैंने बताई है, वो धर्म को आगे ले, तो धर्म को मुनिन करी धरिए, कि ऐसे धर्म को कौन धारण करता है, मुनिराज धारण करते हैं, कौन सा धर्म, जो मैंने ये अभी जो धर्म बताया, कौन सा धर्म बताया, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान रूपी जो धर्म बताया, वो धर्म को धारण कौन करता है, कि मुनिराज धारण करते हैं। अब आगे क्या कहा, तिनकी करतूती उतरिए, कि अब हम उनकी करतूती मतलब उनकी क्रिया का वर्णन करते हैं। लौकिक में करतूत मतलब क्या, अपन वैसे बोलते ना कि इसकी करतूत खराब है, ये सब कर्तव्य है, तो यहाँ वो करतूत की बात नहीं है, यहाँ है कि अब मैं उन मुनिराजों की क्रिया का वर्णन करता हूँ। कौन कह रहा है ऐसा, दौलत राम जी, जिन्होंने लिखा है वो ऐसा कह रहे हैं दौलत राम जी, कि वह जो धर्म है, तो धर्म मतलब वह जो धर्म अभी तक मैंने बताया, सम्यक दर्शन ज्ञान रूपी जो धर्म बताया, वो धर्म वास्तव में मुनिराज धारण मुनिराज धरते हैं, अब मैं उनकी क्रिया का वर्णन करता हूँ। तो क्रिया का वर्णन अब आएगा छठी ढाल में, जो हम आगे छठी ढाल पढ़ेंगे, उस छठी ढाल के अंदर जो मुनिराज का, अभी तक हम अणुव्रतों पे थे, अब हम महाव्रत पे आएंगे, अब तक हम एक देश चारित्र पे थे, अब हम सकल चारित्र यथाकार चारित्र ऊपर आएंगे, पर अब तक हम संसार अवस्था तक ही थे, अब यहाँ से हमारी मोक्ष अवस्था प्रारंभ होगी। मुनिराज जो दीक्षा लेने के बाद जो छठावन स्थान जो प्रारंभ हुआ, वो छठावन स्थान छठी ढाल से प्रारंभ होगा। ऐसा नहीं है कि मुनिराज मुनि अवस्था में चौथा पांचवा या पहला वन स्थान नहीं होता, ऐसा कंपलसरी नहीं है कि मुनि दिशा दशा धारण की तो वो सदैव छठे सातवें से ऊपर ही रहेंगे, ऐसा नहीं है। मुनि अवस्था जब आएगी तब छठा सातवां वन स्थान होगा, लेकिन कभी कभी राग आदि के वश होकर वो उस अवस्था से गिर भी सकते हैं, निष्कात अवस्था तक भी आ सकते हैं, मतलब पहले वन स्थान में भी वो मुनिराज आ सकते हैं, तब उनके भावलिंग बना नहीं रहेगा, लेकिन द्रव्यलिंग तो उनके कायम रहेगा। जो द्रव्यलिंग वाली बात आई थी, द्रव्यलिंग अवस्था में मुनिराज पहले वन स्थान में, चौथे वन स्थान में, पांचवे वन स्थान में भी रह सकते हैं, पांचवे वन स्थान के बाद जब छठे वन स्थान में पूर्ण शुद्ध भावलिंग उनका रहेगा। तो ऐसे मुनिराजों की मैं यहाँ चर्चा करता हूँ। ताको सुनिए भवि प्राणी, उनको सुनो, कौन सुनो, कौन सुनो, भव्य प्राणी, कोई भव्य प्राणी होगा उसके लिए कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं, हमारे लिए कह रहे हैं। तो उससे पहले हमें ये निर्णय करना पड़ेगा कि हम कौन है, प्राणी तो है, भव्य प्राणी है, सबसे पहले अपने अंदर ये नक्की तो करना है कि हम भव्य हैं। अगर मैं भव्य ही नहीं हूँ, मैं अभव्य हूँ, मैं मोक्ष ही नहीं जा सकता, तो मैं इतना प्रयास क्यों करूँगा। तो यहाँ तो सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले डिटरमाइन करना, ये दृढ़ निश्चय करना कि मैं क्या हूँ, भव्य हूँ, बस मेरा मोक्ष नक्की है, नक्की है और नक्की है, आज नहीं तो कल मैं मोक्ष में जाऊंगा जाऊंगा और जाऊंगा, बोला छाती ठोक के बोलते हैं, तो ऐसे ही कि बिल्कुल मैं तो कैसा हूँ, भव्य वाणी हूँ और मुझे मोक्ष पक्का होने वाला है। तो ऐसे जीवों को यहाँ कह रहे हैं ताको सुनिए। अब किसको? कि वो जो मैं मुनिराज का दशा का वर्णन करूँगा उस दशा को ताको सुनिए भव्य प्राणी। भव्य कितने प्रकार के होते हैं? भव्य कितने प्रकार के होते हैं? नहीं, मैंने पूछा भव्य कितने प्रकार के होते हैं। भव्य की तो बात ही नहीं है। अभव्य तो अलग ही हो गया, अभव्य तो है ही नहीं। भव्य कितने प्रकार के होते हैं? भव्य में तीन प्रकार आते हैं, एक निकट भव्य, एक दूर भव्य और एक दुरांदुर भव्य। एक निकट भव्य, एक दूर भव्य और एक दुरांदुर भव्य। निकट भव्य तो वो जो अल्प काल में मोक्ष को जाने वाला है वो तो निकट भव्य। दूर भव्य जो मोक्ष जाएगा लेकिन अभी उससे मोक्ष जाने में थोड़ा काल है, थोड़ा समय है, मतलब दूर। जैसे कोई चीज है, एक यहाँ पे पर्सन खड़ा है, उसके यहाँ पर एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक बिल्कुल ऐसी चीज है, एक सीसी की है। तो निकट भव्य तो ये है जो अल्प काल में मोक्ष को जाने वाला है, बराबर है। दूर भव्य है कि उस जाएगा तो सही लेकिन उसका काल कैसा है? दूर है, दूर काल है। और एक होता है दुरांदुर भव्य, वो भव्य तो है, इसको समझना थोड़ा। वो भव्य तो है, उसमें पात्रता तो है लेकिन वो मोक्ष कभी नहीं जाए। समझा? पहले वापस से समझना फिर मैं समझाता हूँ। बताए ना, सबसे पहला हो गया निकट, जो अल्प काल में मोक्ष जाने वाला है। दूर, जो मोक्ष जाएगा लेकिन उसका काल थोड़ा दूर है। दुरांदुर, दुरान उसके अंदर मोक्ष जाने की पात्रता तो है लेकिन वो मोक्ष नहीं जाएगा। पहला सवाल उसको अभव्य क्यों नहीं कहा? बराबर है, ये मोक्ष जाएगा ही नहीं तो इसको भव्य क्यों कहते हो? इसको अभव्य कह दो, बराबर है। एक भव्य है और एक अभव्य है। गंदा लैंग्वेज में हम बोलते हैं जो मोक्ष गए वो भव्य और जो मोक्ष नहीं जा सकता वो अभव्य, बराबर है। अब भव्य में भी हमने ये तीन भेद किए, एक निकट, एक दूर और एक दुरांदुर। अब इसमें जो दुरांदुर भव्य है उसकी ये बात है कि इसमें पात्रता तो है लेकिन ये मोक्ष जा नहीं सकता। अब इसको अभव्य की श्रेणी में क्यों नहीं डाला? क्योंकि अभव्य में वो पात्रता ही नहीं है। अभव्य में मोक्ष जाने की पात्रता ही नहीं है इसलिए उसको अभव्य कहा। इसमें पात्रता तो है इसके लिए इसको अभव्य की श्रेणी में नहीं डाला, लेकिन पात्रता होने के बाद भी वो मोक्ष नहीं जा सकता। एग्जाम्पल, एक महिला है, बराबर है, एक महिला है, उसकी शादी हुई और तुरंत वो विडो हो गई, विधवा हो गई। अब उसमें माँ बनने की पात्रता तो है, इसमें माँ बनने की लायकात तो है, इसमें माँ बनने की शक्ति तो है, लेकिन वो माँ कभी नहीं बन पाएगी, समझे? और इसको कहते हैं बाण स्त्री, मतलब एक ऐसी महिला जिसके अंदर वो पात्रता ही नहीं है कि वो पुत्र को जन्म दे सके। अपने आजकल की लैंग्वेज में कहते हैं उसके अंदर इतनी वो कैपेसिटी ही नहीं है उसके राष्ट्रीय में कि वो बच्चे को जन्म कभी दे नहीं सकती। तो उसमें वो पात्रता ही नहीं है कि वो पुत्र को जन्म, पुत्र या पुत्री को जन्म दे। तो वो तो हो गए अभव्य की श्रेणी में, कि जिसके अंदर पात्रता ही नहीं है मोक्ष को जाने की वो हो गया अभव्य। लेकिन इसमें पात्रता तो है, इसमें पात्रता तो है लेकिन फिर भी ये जीव कभी मोक्ष को जा नहीं सकता। जैसे इस महिला में पात्रता तो है लेकिन फिर भी सभी ये माँ नहीं बन सकती, समझ रहे। तो ऐसे ही यहाँ पर जो बात कही भव्य अभव्य, भव्य के निकट दूर और दुरान भव्य, तो उसमें भी हम कौन से भव्य है ऐसा सोच रहे हैं, होंगे कोई से तो हो ही जाएंगे। हाँ कौन से निकट भव्य है पक्का तो नहीं, अब हो कुछ भी लेकिन पक्का निर्णय पर यही होना चाहिए कि हम कौन से भव्य हैं, निकट भव्य है, कि हमारा तो मोक्ष अल्प काल में ही होने वाला है, हमारी मुक्ति तो अल्प काल में होने वाली है पक्के में, तो हम कौन से भव्य हैं, निकट भव्य है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते उसमें, अब यहाँ पे जो चर्चा की कि ताको सुनिए भवि प्राणी, कि हे भव्य जी उसको तू सुन, मतलब हम लोगों के लिए कहा है कि हे जीव अब तू इसको सुन, किसको सुन, कि मैं जिन मुनि अवस्था का वर्णन यहाँ पे करूँगा उस अवस्था को तू सुन, और उसको सुनते क्या कर, ताको सुनिए भवि प्राणी अपनी अनुभूति पिछानी। देखिए हमारे यहाँ मतलब ऐसा नहीं कहा कि उसको सुन के तो उनकी शरण में जा, क्या कहा कि उनको सुनकर अपनी अनुभूति को धारण कर, अपनी अनुभूति को पहचान। हमारे यहाँ पर कोई शरण की बात नहीं है कि जैसे तुम महावीर भगवान को पहचान कर महावीर भगवान की शरण में चला जा, है मैंने तेरे ही भरोसे पारसनाथ भवन में नैया डाल दी, हाँ छोड़ दिया, पारसनाथ आपकी नैया पार करने आएंगे। हमारे यहाँ पर कार्य कौन करेगा, स्वयं हम कार्य करेंगे, मार्ग हमको बता दिया है, हमको सब चीज हमारे को मिल गई है, देह का गुरु हमारे निमित्त रूप है, लेकिन उपादानगत योग्यता तो इस जीव की स्वतः की ही होगी। जब भी इस जीव की कार्यलब्धि पकेगी तो पुरुषार्थ तो इस जीव का स्वयं का ही होगा, निमित्त रूप में उस समय चाहे देश गुरु हो समय कुछ भी निमित्त रूप कहा जाए, लेकिन पुरुषार्थ रूप में तो इस जीव का स्वयं का पुरुषार्थ ही एकमात्र कारण होगा, बराबर है। तो ताको सुनिए भवि प्राणी, हे भव्य जी उसको सुनो और अपनी अनुभूति पिछानी, कि उसको सुन करके तुम अपनी अनुभूति को अनुभवन को पहचानो, कि जैसा उनका स्वरूप है वैसा ही मेरा स्वरूप है। फिर प्रवचन सार में आता ना कि जो जाना दी अनंतम द्रव्य गुण पद देते ही, कि जो अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानते हैं वैसे ही द्रव्य गुण पर्याय किसके हैं, मेरे भी हैं, ऐसा जानकर अपने स्वरूप को तुम पहचानो। चलिए अंदर एवं रत्नत्र स्वरूप धर्म मुनियों द्वारा धारण करवामा आवे थे, ते मुनियों की क्रियाओं कहवामा आवे थे, हे भव्य जीवो तेने सामड़ो अने पोताना आत्माना अनुभव ने ओळखो, कि उनको सुन करके अपनी आत्मा के स्वरूप को तुम पहचानो। भारत निश्चय रत्नत्र स्वरूप धर्म ने भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि अंगीकार करे थे, लेकिन ये ध्यान रखना निश्चय रत्नत्र रूप जो भावलिंग पना है वो एकमात्र मुनि अवस्था में ही आ सकता है। कोई कहे कि मैं घर में बैठकर मैंने भावलिंग धारण कर लिया तो वो तीन काल में भी संभव नहीं है। जो भावलिंगी पना है, जो निश्चय रत्नत्र रूप जो भावलिंगी पना है, जो तीन कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक जो भावलिंगी पना है वो मात्र मुनि अवस्था में ही आएगा। मुनि अवस्था से पूर्व वो एक कषाय चौकड़ी का अभाव हो सकता है, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हो सकता है, लेकिन तीन कषाय चौकड़ी का अभाव घर में बैठे बैठे नहीं हो सकता। तीन कषाय चौकड़ी का अभाव एकमात्र मुनि अवस्था धारण करने के बाद ही होता है। क्या लिखा, निश्चय रत्नत्र स्वरूप धर्म ने भावलिंगी दिगंबर जैन मुनि अंगीकार करे थे, कोई नहीं हरे आदर से मुनियों ना सकल चारित्र नु वर्णन करवामा आवे थे। अभी तक यहाँ से एक देश चारित्र का वर्णन किया, अब यहाँ से सकल चरित्र का वर्णन करवाना आए थे। अतः हे भव्यो ते मुनिवरो ना चरित्र सांभळो अने पोताना आत्मा नो अनुभव करो कि उन मुनियों के चरित्र को तुम समझो सुनो और उस जैसा बनने का प्रयास करो। ये जो बारह भावनाएं हैं, ये बारह भावनाएं जो वैराग्य की वृद्धि करती हैं, तो वैराग्य कैसा, वैराग्य यहाँ पे कैसा वैराग्य है, सहज वैराग्य। ऐसा वैराग्य नहीं कि घर में किसी की मृत्यु हो गई और उसको वैराग्य आ गया। होता है ना, घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो आप सबको जितने भी घर वाले हैं उनको वैराग्य तो आता ही है। हमारा कोई प्रिय है, किसी माता का पुत्र 12 वर्ष की उम्र का या 14 वर्ष की उम्र का पुत्र अगर मृत्यु को प्राप्त करे तो उस माता को कितना वैराग्य आता है कि संसार में कोई भी मेरा नहीं है, कोई भी सदैव रहने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ उस वैराग्य की, क्षणिक वैराग्य की बात यहाँ पर नहीं है कि ऐसे क्षणिक वैराग्य तो हमको ना जाने कितनी बार आते हैं। एग्जाम में कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम में हमने खूब ट्राई किया लेकिन हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर हमको ऐसा लगता है अरे कुछ भी करने जैसा नहीं है, सब कुछ छोड़ दो, मैं तो सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। इतना कई बार हमारे मन में विकल्प आता है लेकिन यहाँ उस वैराग्य की बात नहीं है। मान लीजिए किसी महिला के जैसे पुत्र की मृत्यु हुई घर में, किसी के भी जैसे किसी के भाई की मृत्यु हुई, वो कितने दिन व्हाट्सएप नहीं चलाएगा। जनरल एग्जाम्पल समझिए, किसी की मृत्यु हुई एक दिन नहीं चलाएगा, दो दिन नहीं चलाएगा, तीन दिन नहीं चलाएगा, पांच दिन नहीं चलाएगा, शोक में एक महीना नहीं चलाएगा, दो महीना नहीं चलाएगा, तीन महीना ज्यादा हो गया है ना, तीन चार महीने के बाद स्वतः वो वापस अपने उस ट्रैक के ऊपर वापस आ जाएगा, वही मतलब जो क्रिया करता था वही क्रिया में लग जाएगा। तो यहाँ ऐसे क्षणिक वैराग्य को कोई महत्व दिया नहीं है कि ऐसा वैराग्य जीव को ना जाने जीवन में कितनी बार आता है, कितने संयोगों को देखकर आता है। यहाँ तो सहज वैराग्य की बात है कि सामने सब कुछ हो तो भी उसको भोगने की इच्छा अपने अंदर नहीं हो। ना भरत जी घर में वैरागी, तो उनको वैरागी क्यों कहा कि सामने सब कुछ, चक्रवर्ती का वैभव, हमारा वैभव तो क्या है, कुछ भी नहीं है। जिसके छाने छाने हजार तो उसकी सेना के रानियां, उसके इतने घोड़े, इतने हाथी, इतने पैदल उसके सेना के, कि इतना सब कुछ वैभव होने के बाद भी उनको भोगने की अपने अंदर इच्छा नहीं हो, उसका नाम है सहज वैराग्य। बाकी हमारे तो जरा जरा से में वैराग्य आता है और जरा जरा से में वैराग्य चला जाता है ना। बॉम्बे अपने यहाँ पे तो होता है ना, जैसे सीजन आता है तो हापुस चेरी आती है, हापुस आम आता है, तो कैसा लगता है उस आम के सामने बाकी सब कुछ फीका लगता है, बस उस समय का हापुस आम आया। जैसे हापुस के बाद में भी दो तीन जैसे बादाम आम आता है, दूसरे आते हैं, तो उसके सामने वो हापुस अच्छा नहीं लगता। हापुस के सामने और कोई महंगी चीज आ जाए तो वो अच्छा नहीं लगता, वो उससे उसको वैराग्य हो जाता है आगे वाली चीज को, फिर उसके आगे। तो इतना कहते हैं कि जैसे देवताओं के जो कंठ में अमृत झरता है, देवताओं का भोजन करता कंठ में से अमृत झरता है, कि उस अमृत को भी पीने की इच्छा जिसके अंदर नहीं है, ऐसा वैराग्य पुरुष का वास्तव में ये मार्ग है। चक्रवर्ती के संपदा भी नहीं, चक्रवर्ती की चक्रवर्ती के भोजन का वर्णन सुना है कभी किसी ने, वो भोजन का वर्णन भी सुनेंगे तो हमको ऐसा लगेगा कि कितना महान मतलब उसका भोजन होता होगा। चक्रवर्ती के रसोइये कितने होते हैं, 365 तो उसके रसोइये होते हैं। जिसका एक बार नंबर आ गया उसका साल में दोबारा नंबर ही नहीं आएगा। हमारे यहाँ तो एक ही महाराज, पर वो भी छुट्टी ले ले तो हमारा माता हरा है ना। हमारे घर में तो एक या दो बनाने वाले, उसमें भी लड़ाई रोज की। वहाँ तो 365 खाना बनाने वाले, 365 रसोई महाराज वहाँ पर है। एक का नंबर आ गया वो बाकी 364 दिन उस एक दिन की तैयारी करता है, पूरे ढाई दिन में से वस्तुएं ढूंढता है, उसकी तैयारी क्या बनाओ कैसा बनाओ ये बनाओ। चक्रवर्ती की जो एक रोटी भी बनती है गुजे की कहते थे 10,000 गाय का दूध 1,000 गायों को, 1,000 गाय 10,000 गाय का दूध 1,000 गायों को पिलाओ, उन 1,000 गायों का दूध 100 गायों को पिलाओ, उन 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाओ, और उन 10 गायों का दूध 1 गाय को पिलाओ। फिर उस गाय का जो दूध निकले उसके घी से जो रोटी बनती है वो रोटी चक्रवर्ती खाते हैं। हमारा भोजन तो क्या है, मतलब ऐसा भोजन उसको पचाने की ताकत भी चक्रवर्ती के है। पूरी सेना उस एक रोटी को नहीं खा सकती, इतना चक्रवर्ती का बल होता है। ऐसा ऐसा वर्णन आता है, वो तो ठीक है थोड़ा विषय से वो हो गया कि चक्रवर्ती जब कोई युद्ध जीत कर आता है तो ऐसे ही वहाँ पर चक्रवर्ती की रिद्धि होती है कि वो सब इतने दूर तक का उनको सब सुनाई देता है, ऐसी सब रिद्धियाँ होती है और धीरे धीरे उनको बढ़ती है। तो ऐसे जैसे वो युद्ध करके आए तो क्या हुआ कि सैनिक लोग बैठे हुए थे स्नान कर रहे थे, सैनिक आपस में वार्ता करते हैं कि ना लड़ाई तो हम करते हैं ना, राजा के सैनिक की युद्ध तो हम करते हैं, मारे हम जाते हैं, सब कुछ हम करते हैं, और क्रेडिट किसको जाता है, राजा को जाता है। जैसे आजकल होता है ना कि काम हम करते हैं और सब एचआर को मिल जाता है या सब कुछ बोनस मिलता है तो हमारे ऊपर जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है उसको मिल जाता है और हम तो ऐसे ही हाथ हिलाते रह जाते हैं। तो वो ऐसा कर रहे थे तो चक्रवर्ती के कान में वो बात आई, तो चक्रवर्ती ने क्या किया कि अगली सुबह महामंत्री को बोला कि पूरी सेना को बुलाओ, पूरी जितनी भी सेना है उस सेना को बुलाओ। तो महामंत्री जी ने पूछा क्या हुआ महाराज, कि मेरी ये उंगली टेढ़ी हो गई है, इस उंगली को सीधी करना है, ये उंगली सीधी नहीं हो रही है, इसको सीधी करना है, पूरी सेना को बुलाओ। सेना को बुलाया गया, क्या किया उस उंगली पे एक रस्सी बांधी और पूरी सेना को लगा दिया कि इस उंगली को सीधी करो, पूरी सेना उस उंगली को सीधी नहीं कर पाई। वो होता है चक्रवर्ती का बल, ऐसा बलशाली चक्रवर्ती। और उस चक्रवर्ती से ऊपर जो इंद्र, जो सौधर्म इंद्र है, जो इंद्र आदि है जिनके कंठ में, उस चक्रवर्ती के भोजन को भी देवता लोग बोलते हैं कि ये भोजन तो हमारे काम का है ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा अच्छा तो हमारा अमृत है। समझ रहे हैं, क्या कहा, अपने भोजन से अपने को आफूस चेहरी अच्छी लगती है, मान लीजिए कोई भी रसगुल्ला अच्छा लगता है, उससे तो चक्रवर्ती तो उसको कभी देखेगा ही नहीं, क्योंकि उसका भोजन तो इतना ज्यादा अच्छा है। देवता लोग चक्रवर्ती के भोजन को नहीं देखेंगे, क्योंकि देवताओं के सामने तो साक्षात अमृत है। तो ऐसा अमृत पीने वाले जीव भी जिनके चरणों में नतमस्तक होते हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान जिस चीज का भोजन करते हैं, जिनेन्द्र भगवान के भोजन होता है। तो मैंने क्या कहा, ऐसे जिनेन्द्र भगवान, ऐसे मुनिराज भी जिस चीज का भोजन करते हैं, अर्थात जिस आत्मा के रस का आस्वादन प्रति समय करते हैं, उस आत्मा का रस का आनंद कितना महान होगा कि जिसके आगे देवों का अमृत भी पानी के समान लगता है। तो तापो सुनिए भव्य प्राणी, उस अनुभव को, उस क्रिया को हे भव्य जी तुम सुनो और उसको सुनकर तुम अब अपनी अनुभूति को धारण करो। बराबर है, क्लियर है। चलिए एक बार एक पूरी पांचवी ढाल को हम रिवाइज करेंगे, किसी को कुछ पूछना है तो साथ में। ठीक है, पांचवी ढाल हमने प्रारंभ की। हाँ, और एग्जाम से भागना नहीं, कई बार होता है एग्जाम के दिन पर बहुत कम, आज तो ऐसे भी कमी है, फिर भी एग्जाम के दिनों में भी और बहुत कम हो जाते हैं। तो एग्जाम यहाँ पर कोई अपने को कॉम्पिटिशन टाइप तो हो नहीं रही है कि हमारा ये रिजल्ट आया तो हमें कुछ, इससे तो क्या होता है कि हमको मालूम चलना है कि हमने इतना पढ़ा है, हमारे ध्यान में इतना अभी भी है, पढ़ तो रहे, जैसे अभी सुना यहाँ पर बैठ के हमने एक घंटे सुना, नीचे गए तो सब बाउंस है, सब ऊपर से गायब हो जाता है। तो वैसा नहीं करना है, एग्जाम देने से क्या होता है कि जो चीज हमने पढ़ी है वो हमारे ख्याल में कितनी है वो चीज हमारे ख्याल में रहती है। तो पांचवी ढाल के अंदर हमने 12 भावनाओं का स्वरूप जो समझा, उस 12 भावनाओं के अंदर सर्वप्रथम पंडित दौलत राम जी ने जो कहा कि जो मुनिराज है, जो समस्त व्रतों को धारण करने वाले जो मुनिराज है, वो इस भव भोग से दूर होने के लिए, इस वैराग्य की वृद्धि करने के लिए इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं। बराबर। फिर बाद में धीरे धीरे यहाँ पे 12 भावनाओं का स्वरूप बताया, जिसके अंदर अनित्य भावना बताई। ये उसे मैंने आपको बोला 6 भावनाएं। सबसे पहले जो अनित्य है, अनित्य के अंदर क्या बताया कि मैं वास्तव इस संसार में कुछ भी चीज सदैव काल रहने वाली नहीं है, जो आया है उसका जाना निश्चित है। और अनित्य के बाद कौन सी है? असुरक्ष। कि चलो मेरा जाना निश्चित है तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ उपाय करता हूँ जिससे मैं बच जाऊँ। लेकिन असुर भावना ये बताती है कि तुम कितना ही उपाय करो, महीने से नया डॉक्टर करो, फिजियो करो, कुछ भी करो, लेकिन जब तुम्हारी आयु समाप्त होगी,
आवाज आ रही
वो चलती है, वो आएगी, वो जब तक मेरी आवाज आ रही आपको ऐसा होना चाहिए, मेरी आवाज आ रही। असुर भावना क्या बताती है कि जब तक ये भी कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन संसार में जब उसकी आयु समाप्त होने वाली होगी, कोई भी इसको बचाने में समर्थ नहीं है। उसके बाद क्या आती है? संसार। संसार भावना ये बताती है, इसने बोला चलो अब मरना तो है ही, जब तक संसार में है मजे से रहो, सब लोगों के साथ अच्छे से रहो। तो संसार भावना ये बताती है कि संसार में जितनी भी चीजें हैं वो तेरी सभी है ही नहीं, सब लोग अपने स्वार्थ के साथ ही है, आपका स्वार्थ खत्म हो जाएगा तो सब लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे, तो वो संसार भी रहने लायक नहीं है, क्योंकि तीर्थंकरों ने सब महापुरुषों ने संसार को छोड़ा है। उसके बाद आती है एकत्व भावना। एकत्व भावना बताती है कि आप अकेले ही जन्म लेते हैं और अकेले ही आपकी मृत्यु होगी। एकत्व मतलब अकेला, कि मैं अकेला ही आया था, अकेला ही जाऊंगा। एकत्व के बाद आती है अन्यत्व भावना। अन्यत्व भावना पर से अन्य करती है, मतलब दूसरे पदार्थों से अपने को भिन्न बताती है, कि जितने भी पदार्थों को मैंने अपना माना था वो पदार्थ वास्तव में मेरे है ही नहीं, वो सब कैसे है? अन्य है। उसके बाद आती है अशुचि भावना, कि ये सबसे मैंने सबसे को भिन्नता कर ली, लेकिन अब लास्ट में क्या बचा? मेरा शरीर। मैंने सबको छोड़ा लेकिन क्या बचा? मेरा शरीर बचा है। अशुचि भावना बताती है कि ये जो शरीर के लिए तुम दिन रात प्रयास करते हो, वो शरीर तो ऐसा है कि बहुत ही घिनौना शरीर है, जिसके अंदर पूरे में मल मूत्र आदि भरा हुआ है, बवाद रक्त आदि भरा हुआ है, तो ये शरीर भी सदैव तेरा साथ देने वाला नहीं है, इसके लिए शरीर से जो मोह है उस मोह को भी तुम घटाओ, उसको भी तुम कम करो। तो ये पहली 6 भावनाएं हैं। इन 6 भावनाओं ने इस जीव को संसार शरीर आदि संयोग आदि से उसको भिन्नता कराई है। बराबर। फिर उसके बाद की जो 6 भावनाएं आती है, नाम याद है ना, पहली अनित्य, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी, उसके बाद अच्छा भावना। मैंने तो पर पदार्थों से भिन्नता बताई, अब स्वय तत्व के ऊपर लेके जाते हैं कि आश्रव, ये जो जीव कर्म आदि का जो आना है, उसके अंदर जो सुख दुख मानता है, कि बुरे कर्म में दुख मानना और अच्छे कर्म में सुख मानना, तो वो दोनों भी एक जैसे है, कर्म का बंधन है, तो ऐसे कर्मों के आने को तू रो। आश्रव के बाद कौन सी आई? संबंध, कि ये जो कर्मों का आना है उस आने को तू रोक दे, जिससे तेरे नए कर्म बंधे ही नहीं। फिर आती है इंद्रा, कि
ये जो काल बंधन को तुमने रोक दिया, लेकिन जो तेरे पास बचे हुए कर्म थे उन कर्मों को तू धीरे धीरे क्या कर, निर्जरित कर। निर्जरा भी दो प्रकार की आती है, एक सकाम निर्जरा और एक अकाम निर्जरा, जिनको सभी पाप और अभिपाप भी बोलते हैं। अकाम निर्जरा क्या होती है? अकाम मीन्स बिना काम, और काम मतलब बिना कुछ किए जो कर्म फिर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कर्म कभी फिरते नहीं है, आप यहाँ है तो भी प्रति समय आपके कर्म तो फिर ही रहे हैं। जो हमारे आठ कर्म है उन आठों कर्मों का फिरना तो प्रति समय चालू है, उसे बोलते हैं अकाम निर्जरा। मैंने कभी हमारे पाप का उदय आया तो वो जो पाप के कर्म थे वो कर्म फिरे, पुण्य का उदय आया तो पुण्य के कर्म फिरे, तो फिर तो रहे लेकिन पाप के नए बन भी रहे हैं। तो ये है अकाम निर्जरा, जहाँ कुछ करना नहीं पड़ता। अकाम मतलब बिना कुछ किए जो कर्म निर्धारित हो रहे हैं वो अकाम निर्जरा। फिर सकाम निर्जरा कि जहाँ काम करके मतलब जो तप आदि के द्वारा, ध्यान आदि के द्वारा जो कर्मों को निर्जरित किया जाता है वो होती है सकाम निर्जरा। पर अकाम तो सबसे चल रही है, ज्ञानी अज्ञानी सबसे अकाम निर्जरा चल रही है, लेकिन सकाम निद्रा मात्र ज्ञानी के ही होती है। जो तपश्चर्या आदि करके, जो ध्यान आदि करके, जो मनराज है, जो सपने दृष्टि जीव है, जो अपने कर्मों की निद्रा करता है वो सकाम निद्रा कहलाती है। बराबर है। फिर इस निद्रा के बाद कौन सा आता है? लोक। जो तीन लोक जो बताया, इस तीन लोक के अंदर हमने अनंत बार जन्म लिया है, अनंत बार हम मरण को प्राप्त हुए हैं, अनादि काल से हम हैं। तो ये जो तीन लोक है, इस तीन लोक में एक मात्र कि वास्तव में मैंने तीनों लोक में बहुत भ्रमण किया है, अब तो मुझे जो एक घर के ऊर्ध भाग में जो आठवीं भूमि है उस भूमि के ऊपर जो पिछले क्षेत्र है मुझे वहाँ विराजमान होना है। ये तीन भावना कौन, चार भावना कौन कौन सी? आश्रम, संवर, निद्रा और लोक। कितनी हो गई? दस। पहली से दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवी, आठवी, संवर, नवी, निद्रा, दसवीं लोक। अब इसके बाद ग्यारहवीं आती है बोधि दुर्लभ। काली बोधि नहीं, बोधि दुर्लभ। बोधि में बोधि मतलब होता है ज्ञान, और दुर्लभ तो सब जानते हैं ज्ञान की दुर्लभता। यहाँ ज्ञान मतलब बाहर का ज्ञान नहीं है कि हमने मेडिकल की पढ़ाई की, मैं डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वो वाले ज्ञान की यहाँ बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान तो कैसा होता है, समाप्त हो जाता है। मान लीजिए मैंने इंजीनियरिंग का बीई के फर्स्ट सेमेस्टर में जो पढ़ा वो मेरे कोई फाइनल ईयर में फाइनल सेमेस्टर में पूछे तो मुझे याद ही नहीं रहता। मैंने कॉलेज में जो पढ़ा वो मुझे मेरे जॉब के पांचवे साल में किसी ने कुछ पूछा तो मुझे याद ही नहीं रहता। तो ऐसे ज्ञान की यहाँ बात नहीं है कि जो ज्ञान अभी है और अभी चला जाए, कुछ समय पश्चात चला जाए। ये तो वो ज्ञान है जो सदैव भवो भवो तक मेरे साथ में जो रहने वाला जो सम्यक ज्ञान है उस सम्यक ज्ञान की यहाँ पर व्याप है। मात्र सम्यक ज्ञान ही नहीं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र तीनों की बात है कि वो बहुत ही दुर्लभ, कि ऐसा ज्ञान वास्तव में बहुत दुर्लभ है। वो दुर्लभता की पूरी बात बताई कि वो ज्ञान बहुत दुर्लभ है, तो ये ज्ञान की प्राप्ति का मैं निरंतर प्रयास करूं। फिर उसके बाद में कौन सी भावना आती है? धर्म भावना, कि ये जो ज्ञान है, ये जो मुझे प्राप्त हुआ, इस संसार में एकमात्र अगर शरणभूत है तो वो है वास्तव में धर्म। जिन धर्म जो है वो ही वास्तव में मेरा सच्चा साथी है, उसके अलावा और कोई भी मुझे संसार में साक्ष रूप से नहीं है। क्योंकि सब लोग तो एक एक चक्कर में बात छोड़ देंगे, लेकिन ये घर ही ऐसा है जो सदैव काल मेरे साथ रहने वाला है, कभी मेरा साथ छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे जिस धर्म को मैं अंगीकार करूँ, ये जानता है इसमें धर्म भावना में जो भाव मोहते न्यारे ज्ञान लता जी सारे, तो धर्म जगे दिए धारे तब ही सुख अजल निहारे। कि वास्तव में ये धर्म को जब ये जीव धारण करेगा तब ही सुख, और कैसा सुख? अचल। जो अचल था ना, अचल मतलब जो कभी चलायमान होने वाला नहीं है। हम सुख किसे मानते हैं? ये वास्तव में सुख की परिभाषा क्या है? सुख किसे कहते हैं? जो आकुलता रहित हो और बराबर पॉइंट बराबर है। और हम इतना तो सबको मालूम है हमें सुखी होना है, पर हम सुख चाहते हैं। हमने सुख किसे माना है? अभी हमें गर्मी लग रही है तो एसी चालू हो गया तो सुख हो गया, और सर्दी में एसी चालू हो गया तो सुख हो गया। तो वो चीजें सुख सुख रूप नहीं है। हमने जो सुख दुख रूप मान रखा है वो सुखाभास, जिसे हमने कहने में सुख मान रखा है, वो वास्तविक सुख नहीं है। सुख तो किसे कहते हैं? जो आकुलता से रहित हो, मतलब जिस सुख में कोई आकुलता कभी भी नहीं हो, एक समय में कभी भी जिसमें आकुलता नहीं हो। दूसरा, जो बाधा से रहित हो। बाधा से रहित मतलब जो किसी के द्वारा रोका नहीं जाए, मतलब मेरा सुख आपके द्वारा कभी रोका नहीं जाए। मुझे 99 आए और किसी को 99.1 आए, तो मेरे जो मेरा जो पोजीशन था वो कोई दूसरा ले गया। तो वो चीज यह है कि जो सुख कभी किसी के द्वारा बाधित नहीं हो, और तीसरा जो सदैव रहे, जो सदैव सुख रहे। हमने अभी एक रसगुल्ला खाया, हमें 5 मिनट तक सुख रहा, 2 खाया 10 मिनट तक रहा, 3 खाया 4 खाया 5 खाया, 6 का खाने के बाद तो वही सुख दुख रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ घनिक सुख की बात नहीं है। वो सुख कैसा होना चाहिए? आकुलता से रहित होना चाहिए, बाधा से रहित होना चाहिए, और सदैव काय होना चाहिए। और एक बार, कभी भी पुराना नहीं हो, ओल्ड नहीं हो। अगर मैंने अभी जो सुख लिया वो सुख तो मैंने ले लिया, अगर वो पुराना हो गया तो फिर मुझे उसमें मजा क्या आएगा? बराबर है। मैंने आईफोन लिया, 6 लिया, अब 7 आ गया तो मेरे लिए तो वो 6 पुराना हो गया, अब उसमें मजा नहीं आता। कल को 8 आ जाएगा तो फिर 7 में भी मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या हुआ? पुराना हो गया। हम घर में कोई नई चीज लेके आए, 1 महीने बाद या 1 साल के बाद वो कहती, पहले तो जब नई लाए थे तो उसमें बहुत सुख लगता था कि मैंने नया सोफा खरीदा, नया बेड खरीदा, बहुत अच्छा लगता है। 1 साल बाद कैसा लगता है? अब तो ये पुराना हो गया। तो यहाँ तो वो सुख कैसा है? जो कभी भी पुराना नहीं हो, सदैव जैसा था वैसा सुख सदैव निरंतर कुछ समय उसमें से आता रहे, उसका नाम वास्तविक सुख है। और वो सुख वास्तव में कहाँ है? हाँ, हम लोग बोलते ना कहाँ है? सिद्ध शिला में है। सिद्ध शिला में कुछ नहीं है। सिद्ध शिला तो खाली शिला मात्र है, उसमें थोड़ी ना सुख भरा है कि आप जाओगे और वो शिला शिला आपको सुख दे देगी। सुख कहाँ है? सुख तो हमारे अंदर है। सुख कहाँ है? सुख तो हमारे अंदर, हमारे आत्मा में स्वयं में सुख है। जब हम उस सुख स्वरूप को पूर्ण प्राप्त कर लेंगे, तब ये जीव उस सिद्ध शिला के ऊपर जो सिद्ध क्षेत्र है उस क्षेत्र में जाकर विराजमान होगा। बराबर है। तो ऐसे वो कब होगा? जब वो ये वास्तविक धर्म को धारण करेगा, तब वो वास्तव में इस सुख को प्राप्त होगा। तो इस प्रकार इस 5 भाग में, 5वीं भाग के अंदर क्या बताया? इस संसार के जीव को वैराग्य की वृद्धि कैसे हो, उस वैराग्य की वृद्धि करने का उपाय इसके अंदर बताया। आपने पंचलैनक देखे होंगे, पंचलैनक के अंदर जब दीक्षा का प्रसंग आता है, जब इन 12 भावनाओं का पाठ किया जाता है, घरों में भी ऐसे ही पाठ होता है, डेली बेसिस पे भी किसी का मरण प्रसंग होता है जब भी पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ उस क्षणिक वैराग्य की बात नहीं है। यहाँ एकमात्र जो सहज रूप में जो वैराग्य होता है कि सब कुछ होने के बाद भी उसको भोगने की इच्छा जो नहीं है, उस सहज वैराग्य का नाम वास्तव में बारह भावनाओं का चिंतन है। तो इन बारह भावनाओं के बाद अब वास्तव में मुनि धर्म का स्वरूप जो आगे चलेगा, शायद अपने दशलक्षण के बाद अपनी छठीलाल स्टार्ट होगी, क्योंकि नए संडे एग्जाम उसके बाद फिर दशलक्षण आ जाएंगे। तो दशलक्षण के बाद ऐसे ही टेन के समथिंग अपनी नेक्स्ट फिर उसमें रहेगी। तो आपको पांचवी ढाल में बेसिस में देखिए क्या क्या, एक तो भावनाओं के नाम याद होने चाहिए, भावनाओं की छोटी छोटी डेफिनेशन याद रखना, अनित्य किसे कहते हैं, अश्वन किसे कहते हैं, सबके अर्थ में आपको मिल जाएंगे, बराबर है। और थोड़ा बहुत जैसे इसमें लास्ट में जो सारांश दिया है, ये बारह भावनाओं का पेज नंबर 155, एक बार मैं पढ़ता हूँ सभी बुक पे ही 155 में, आप बारह भावना के चारित्र गुण ना अहंसे शुद्ध पर्यायों से तेती से सम्यक व्यक्ति जीव में हो सके थे, सम्यक प्रकारे आ बार प्रकार में भावना भाववाद की विपराकता में वृद्धि थाय से ते बार भावना नु चिंतन मुख्यपणे भीतरा दिगंबर जैन मुनिराज ने हुए थे, अने गौण पड़े सम्यक व्यक्ति ने हुए थे, जेम पवन लागरा की अग्नि भवती उठे थे, तेम अंतरंग परिणामों ने शुद्धता कही, आ भावनाओं चिंतन करवा की समता भाव प्रकट थाय से, अने तेना की मोक्ष सुख प्रकट स्वयं सन्मुखता पूर्वक आ भावनाओं की संसार शरीर अने भोगो प्रत्ये विशेष उपेक्षा थाय छे, अने आत्माना परिणामों की निर्मलता वधे छे। आ बार भावनानो स्वरूप विस्तार से जानो हुए तो स्वामी कार्तिकन उपेक्षा जानानम वगैरह ग्रंथों नो अवलोकन करवो। इसमें क्या बताया कि ये बारह भावनाएं पढ़ने से विशेष उपेक्षा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके अंदर उपेक्षा है नहीं और आप खाली बारह भावनाएं पढ़ लो तो आपकी उपेक्षा जागृत हो जाएगी। अगर ऐसा होता तो इसको पहली लाल में लिखते, इसको पांचवी में क्यों लिखा कि पहले इस जीव को उस पोजीशन पर लेकर आए, पहले इस जीव को आप किसी को उसको एडी टेढ़ी आती नहीं और आप सीधे उसको मोक्ष में पहुँचा दो, मोक्ष का मार्ग बता दो तो उसको आपकी बात तो सुन लेगा। अगर होगा या मान लीजिए आपसे नीचे वाला जीव होगा तो सुन तो लेगा, लेकिन समझ में उसको कभी नहीं आएगा। तो हर चीज का एक स्तर है, तो यहाँ पहले उसको स्टेप बाई स्टेप करके उसको लाया, अब जब उसको इस स्वरूप को जानने की इच्छा जग गई तब उसको इन बारह भावना का स्वरूप बताकर और उसको विशेष वृद्धि कराई। आगे क्या लिखा, अनित्यवादी कुंतवंती शरीर आदि ने पूरा जानी, हितकारी न जाने तेना की उदास थव तेनो नाम अनुपेक्षा नथी, कारण की एक जेम प्रथम कोई ने मित्र मानतो हतो त्यारे तेना की राग हतो, अने पाछळ थी तेनो अवगुण जोई ने उदासीन थयो, तेन पहला शरीर आदि थी राग हतो पण पाछळ थी तेना अनित्यादी अवगुण देखी आ उदासीन थयो, परंतु एवी उदासीनता तो देश रूप छे, पण ज्यां जेवो पोतानो सजातिको स्वभाव छे तेवो ओळखी भ्रम छोड़ी तेने भला जानी राग ना करवो तथा पूरा जानी देश ना करवो, एवी साची उदासीनता अर्थे अनित्यता वगैरह में यथा चिंतन करवो एज साची अनुपेक्षा छे। मतलब क्या समझो कि शरीर से जो यहाँ पर भिन्नता बताई उसका मतलब ये नहीं है कि आप शरीर से द्वेष करो। क्या लिखा, ये शरीर मेरा नहीं है या शरीर अच्छा नहीं है या शरीर मुझे मोक्ष मार्ग में बाधक है, संयोग बाधक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस शरीर को काटने लग जाऊं, कि शरीर मेरा सहायक नहीं है तो मैं इस शरीर से गुस्सा करूं, द्वेष करूं, वो बात नहीं। उदाहरण दिया ना कि जैसे किसी को पहले मित्र मानते थे, फिर वो उसने हमसे कुछ गलत किया तो हमने उससे क्या किया, अपनी मित्रता छोड़ दी, तो वहाँ तो वो मित्रता छोड़ने का कारण क्या हुआ, द्वेष बना हुआ कि इसने मेरा कुछ गलत किया इसके लिए मैं उससे द्वेष करके मित्रता छोड़ू। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है कि यहाँ तो शरीर से राग छोड़ना है लेकिन द्वेष करना नहीं है, संयोगों से राग छोड़ना है लेकिन द्वेष करना नहीं है। संयोग शरीर अपनी जगह है लेकिन उस जगह के होने के बाद भी मैं उन सबसे भिन्न हूँ,
ऐसा अपने स्वरूप का ज्ञान करना है, क्योंकि भावनाओं का इसने बताया ना, भावनाओं को बोलने का, भावनाओं का भाने का फल शरीर आदि संयोगों से देश बुद्धि कराना नहीं, बल्कि उनसे पृथक अपने स्वरूप का ज्ञान कराना है। तो इस प्रकार इन 12 भावनाओं का स्वरूप हमने देखा। इसके अंत में आए ना बोधि दुर्लभ से कि अंतिम ग्रहित लोक की हद की बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के तो मैं अंतिम ग्रहित तक जाकर आया, लेकिन फिर भी मैं मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सका और वापिस संसार में ही भटक गया। तो अब मुझसे पुनः वो भूल नहीं हो, मैं अब मुनि अवस्था का वास्तविक स्वरूप को समझू, मुनि अवस्था को धारण करूं और ये जो संसार के जो दोष आदि है उन दोषों का मैं परिहार करूं। इस प्रकार इस पांचवी ढाल के अंदर इन 12 भावनाओं का स्वरूप बताया है। बराबर है। अभी किसी को कुछ देखिए, इसमें डिफरेंस में आपको हो सकता है, ये क्वेश्चन आंसर तो जैसे आपके पहले 4 ढालों में आए हैं वैसे ही क्वेश्चन आएगा। ब्रिंदा ब्लैंक आएंगे, ट्रू एंड फॉल्स आएंगे, आपके जोड़ी मैच वाले आएंगे, मैच का कॉलम आएगा और डेफिनेशन वाले आएंगे और एक तो आपके थोड़े बड़े आएंगे, जैसे 5वीं ढाल का सार लिखो या 12 भावनाओं के स्मरण से क्या लाभ है, 12 भावनाओं को समझकर हमारे अंदर क्या परिवर्तन आ सकता है, ऐसे 2-3 उसमें क्वेश्चन रहेंगे। तो उस हिसाब से हम, हमारे पास काफी समय है और हमने बहुत विस्तार से इस ढाल को पढ़ा है, तो उसको हम धीरे घर पे उसको रिवाइज करना, नेक्स्ट संडे मोस्टली एग्जाम देगा, वो अपने ग्रुप के ऊपर अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी किसी को 5वीं ढाल में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो घर पे अगर रिविजन में भी कुछ लगे तो पूछ सकते हैं। चलिए संक्षिप्त में जिम्मेदारी स्तुति। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके